नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिए। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने के लिए एक निकाय गठित करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर लद्दाख में मूसलाधार बारिश और गुजरात कोंकण गोवा विदर्भ तथा राजस्थान में लू चलने की संभावना व्यक्त की। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से बेसल में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100% परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 70% के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं ये सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 80% के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं ये सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले गैस उनकी पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत का 80% हो। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
The government has taken adequate measures.
सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी व्यक्तिगत रूप से घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। मैं कर्नाटक की जनता और होटल एसोसिएशन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू खपत को पूरा करने की है।
सीएनजी एंड एलएनजी नीड्स ऑफ द कंट्री।
जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता का वातावरण है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री झा ने कहा कि ऊर्जा और गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत बड़ा क्राइसिस तो है ही, इतना बड़ा वॉर चल रहा है और पता नहीं वॉर कितना लंबा चलेगा। इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इस वॉर की क्या स्थिति होगी वो किसी के हाथ में है नहीं। इसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है जिनके 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मुझे लगता है सरकार भविष्य को देखते हुए कि कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, सब पे सरकार नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया के थ्रू रूमर फैल रहा है, सरकार ने जब साफ साफ कहा है कि कोई क्राइसिस नहीं है, इन सब चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए।
तमिलनाडु में चेन्नई होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से खाद्य उद्योग के लिए आवश्यक व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में हस्तक्षेप करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने कहा है कि चेन्नई शहर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को देखते हुए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों को आवश्यक आपूर्ति सूची में शामिल किया जाना चाहिए। श्री रवि ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को तुरंत समाधान निकालने की अपील की। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सदन में विपक्ष के नेता सहित अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया और विपक्ष की महिला सांसदों पर निराधार आरोप लगाए। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनके भाषण के दौरान अध्यक्ष ने बार बार बाधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से श्री बिड़ला के खिलाफ नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि देश ने 357 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना देश भर के 100 जिलों में लागू की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है।
मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की।
राज्यसभा की कार्यवाही आज केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उनके मंत्रालयों और विभागों की रिपोर्ट पेश करने के साथ शुरू हुई। सदस्यों ने संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की। शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में चुनावी सुधारों पर बहस की मांग की। नारेबाजी के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन के नेता JP नड्डा ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष सदन में वास्तविक बहस नहीं चाहता है। राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को कमजोर किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कानून का शासन बेमानी हो गया है। श्री नड्डा ने दावा किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक मानदंडों का कोई सम्मान नहीं है।
हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की, लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ अव्यवस्था फैलाने में इनका उद्देश्य है, और डेमोक्रेटिक तरीके से जो डिस्कशन चलती है उसमें अवरोध पैदा करना, यही इनका उद्देश्य है। आज भी उन्होंने यही काम किया है, मैं इसकी सारे हाउस की तरफ से घोर निंदा करता हूं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में शामिल न्यायिक अधिकारियों को पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपीलों पर विचार करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ गठित कर सकते हैं। पीठ ने निर्वाचन आयोग को SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने के लिए एक अपीलीय निकाय गठित करने हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नोडल अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर बैठक की। बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सभी हितधारकों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई।
आगे आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए पूरा आयोग पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में है और चुनाव की हर तैयारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी समीक्षा की है। चुनाव आयोग ने चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की, नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया।
श्री कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय की दायर याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय करते हुए कहा कि इस मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा निदेशालय के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज तलाश अभियान शुरू किया। हमारे संवाददाता के अनुसार कल देर रात डबो के आसपास के इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां देखी गईं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त तलाश अभियान जारी है। सरकार ने बताया है कि अब तक 87 करोड़ 30 लाख महिलाओं में सर्विकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सांसदों से मुलाकात की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे तमिलनाडु में एनडीए की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि भारत आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत जो आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोडक्ट्स, जो आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों का, हमारे मछुआरों के उत्पाद को निर्यात करता है, वो आगे आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नामी होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं।
कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी काउंसलर सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। 4 भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र रमजान के दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे और शुक्रवार को बंद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत की ओर से एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत चुनौती पेश करेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेष कार्यक्रमों की नई श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर से बातचीत प्रसारित करेगा। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर मंगला कपूर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और केरल में बिजली कड़कने तथा तेज हवाओं की संभावना है। गुजरात, कोंकण, गोवा, विदर्भ और राजस्थान में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने के लिए निकाय गठित करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से बेसल में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।